أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستوں السلام علیکم ہم آپ کے سامنے اس کاریکرم میں یاتری کی نماز سے سمبندھت مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے ان شرطوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے جن کا ایک نماز کے قصر ہونے کے لیے ہونا آوشک ہے پہلی تین شرطوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ہم اپنے آج کے کاریکرم میں اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ایک یاتری جب یاترا پر جاتا ہے تو کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ اگر اس یاترا میں پائی جائیں تو اس مسلمان یاتری کا دائتو یہ بنتا ہے کہ وہ نمازیں جو چار رکعتی ہیں ان کو قصر پڑھے یعنی دو رکعت پڑھے یعنی عشاء ظہر اور عصر کی نمازیں ان کو دو رکعت پڑھے ان کو چار رکعت پڑھنے کا اس کو حق اور ادھیکار نہیں ہے تین چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی آج چوتھی چیز ہم آپ کے سامنے بیان گے اسی کے بعد اس بات چیت کا کرم آگے بڑھے گا چوتھی شرط جو ایک نماز کے قصر ہونے کے لیے آوشک ہے وہ یہ ہے کہ جس سمے وہ ویکتی یاترا کے لیے ارادہ کرتا ہے اور یاترا پر چل پڑتا ہے اور یاترا کے بیچ میں وہ اپنے ارادے سے پلٹ نہ جائے یعنی جس سمے اس نے یاترا آرمبھ کی تھی اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں ایک نشچنت دوری تک جاؤں گا اور یاترا آرمبھ کی ہی تھی بیچ یاترا میں اس کو یہ شک ہونے لگا یا اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تو یہ ارادے کا بدلنا یہ دو پرکار سے ہو سکتا ہے پہلی صورت یہ ہے پہلی ستھی یہ ہے کہ اگر اس مسلمان ویکتی نے اپنی یاترا کو آرمبھ کر دیا تھا اور اپنے چار فرسخ پہنچنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا یا 22 کلومیٹر یا 22.5 کلومیٹر وہ مجتہدین کے فتوے کے انوسار یعنی اگر چار فرسخ سے کم پر اس نے اپنے ارادے کو بدل دیا ہے تو سارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ اس کو اپنی نماز پوری پڑھنی ہوگی اس کو قصر پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے دوسری استھتی یہ پیش آتی ہے کہ انسان نے یاترا آرمبھ کی اپنے گھر سے چل پڑا اس کا ارادہ تھا کہ ایک نشچت دوری تک جائے گا ایک ایسی دوری تک جائے گا جہاں پر شرعی انوسار سے نماز قصر ہو جاتی ہے اب اگر انسان چار فرسخ پورا کر لے چار فرسخ سماپت کرنے کے بعد اس کا ارادہ بدل جائے کہ اب آگے نہیں جائے گا تو اس کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جس سمے چار فرسخ پورے ہوئے اس نے اپنی آگے کی یاترا کا ارادہ بدل دیا اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ جس استھان پر ابھی ہے وہ اسی استھان پر 10 دن رکے گا اگر اس استھان پر 10 دن رکنے کا ارادہ ہے اس کا تو سارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ اس کی نماز پوری ہوگی اس کو قصر پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان شنکا میں پڑ گیا اس کو شک ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنی یاترا کو آگے بڑھائے یا واپس لوٹ جائے یا یہیں پر یاترا کو سماپت کر دے کیا کرے یہاں پر ایسی صورتیں بھی ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز پوری ہوگی اس کو قصر پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ وہ چار فرسخ تک پہنچا ارادہ اس نے کیا تھا اپنے گھر سے نکلا تھا چار فرسخ کی حد تک پہنچ گیا اب چار فرسخ پہنچنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اپنی یاترا کو آگے نہ بڑھائے واپس پلٹ آئے یعنی چار فرسخ کی اس نے دوری طے کی اور بنا رکے وہ چاہتا ہے کہ واپس پلٹ آئے تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں اگر چار فرسخ پوری کرنے کے بعد انسان کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ واپس پلٹنا چاہتا ہے یہاں پر شرط ہے واپس پلٹنے کی اگر واپس پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی اور اس کو اپنی نماز پوری پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے اگر انسان 8 فرسخ اپنی یاترا کو پورا کر چکا تھا یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اپنی یاترا کے اوپر جب چلتا ہے چلتے چلتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک شرعی انوسار سے نماز قصر ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا 44 یا 45 کلومیٹر جس کو ہم شرعی ویاکھا میں کہتے ہیں کہ 8 فرسخ अगर 8 फरसख पहुँचने के बाद इंसान अपनी आगे की यात्रा का इरादा बदल देता है तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि उसकी नमाज कसर होगी, उसको पूरी नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। तो ये वो मसले थे, ये वो शर्त थी, जब इंसान यात्रा के लिए जा रहा है तो शर्त ये है कि अपने इरादे को, अपनी यात्रा की नीयत को बीच में न तोड़ दें। तो ये चौथी शर्त भी एक नमाज से कसर होने के लिए। उसके बाद एक और शर्त है, जो पांचवी शर्त जिसको हम कहा जाए, हमने बताया था आपके सामने कि एक नमाज से कसर होने के लिए 8 शर्तें आवश्यक हैं, यानी अगर एक यात्रा में ये 8 शर्तें पाई जाती हों तो ही उसकी नमाज कसर होगी। तो पांचवी शर्त जो एक यात्रा के कसर होने के लिए आवश्यक है वो ये है कि इंसान जिस समय अपनी यात्रा को आरंभ कर रहा है उस समय यात्रा के बीच में अपने वतन या किसी ऐसे स्थान से न गुज़रे जहाँ पर उसका 10 दिन रहने का इरादा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि 8 फरसख की यात्रा से पहले अपने वतन को पहुँच जाए या किसी ऐसे स्थान पर पहुँच जाए जहाँ उसको 10 दिन रुकने का इरादा है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसका दायित्व ये है कि अपनी नमाज को पूरा पढ़े, यानी 4 रकत की नमाज को 4 रकत पढ़े, उसको कसर पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर इसमें एक और जो मसला आता है कि अगर 8 फरसख पहुँचने से पहले इंसान अपने वतन को पहुँच जाए या ऐसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर 10 दिन या ऐसे स्थान पर पहुँच जाए जहाँ पर 10 दिन उसका रुकने का इरादा था, तो अगर इसके चूँकि अपने वतन में रुका है या 10 दिन रुकने का इरादा है वहाँ पहुँचा है, तो हमारे सारे फुकहा यहाँ पर यही कहते हैं कि उसकी नमाज पूरी होगी, कसर नहीं होगी। अब अगर इसके बाद एक और स्थिति पेश आती है कि वो इंसान ये चाहता है कि अपने वतन से या अपने उस स्थान से जहाँ पर उसने 10 दिन रुकने का इरादा किया था आगे जाए और उसके आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, तो अगर हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर उसकी ये यात्रा जो आगे की यात्रा है 8 फरसख की हो जाए तो उसकी नमाज कसर होगी, या कम से कम 4 फरसख की हो, उसको जाने के बाद वापस भी आना हो। अगर 8 फरसख एक साथ या 4 फरसख जाना और आना मिला के 8 फरसख हो जाए तो उसकी नमाज कसर होगी। तो ये वो शर्त थी जो एक नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक है, इंसान अपने वतन से न गुज़रे और उस स्थान पर न पहुँचे जहाँ पर उसका 10 दिन रुकने का इरादा है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी बल्कि उसको नमाज अपनी पूरी पढ़नी होगी। उसके बाद की शर्त जो है, जो हमारी नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक है, यानी अगर ये शर्त नहीं पाई जाएगी तो हमारी नमाज कसर नहीं होगी। यहाँ पर एक नुक्ता मैं आपको सामने बयान कर दूँ कि हमने जो आपके सामने बयान किया था 8 शर्तें, अगर इन 8ों शर्तों का एक नमाज के कसर होने के लिए एक साथ होना आवश्यक है, अगर इनमें से कोई एक भी शर्त टूट जाए, एक भी शर्त ना पाई जाए, तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी बल्कि उसको पूरी पढ़ना होगी। तो छठी शर्त जो एक नमाज से कसर होने के लिए आवश्यक है वो ये है कि इंसान जिस यात्रा पर जा रहा है वो यात्रा हराम ना हो, और दूसरी सूरत यह है कि यात्रा में जो कार्य कर रहा है वो हराम ना हो। यात्रा हराम ना हो जैसे कि एक पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना अगर घर से निकलती हो यात्रा पर जाती है तो उसकी वो यात्रा हराम है, और अगर वो हराम यात्रा पर जाती है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी बल्कि उसको 4 रकत की नमाज को 4 ही रकत पढ़नी होगी और उसको कसर पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। और दूसरी बात कि एक तो होता है खुद यात्रा हराम ना हो, दूसरे होता है ये कि जिस कार्य के लिए जा रहा है वो हराम ना हो। जैसे कि इंसान अपने घर से इसलिए निकला कि फलां जगह पर जाकर हम कुछ लोगों को मारेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, या अगर इराक़ में दाइशों से मुत्तसिल हो जाएंगे, इस प्रकार की अगर चीज़ें होती हैं तो चूँकि इंसान का कार्य उस यात्रा में हराम है इसलिए उसकी नमाज पूरी ही पढ़ी जाएगी, उसको कसर पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद जो चीज़ है इसी में और मसले निकलते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिस समय उसने अपनी यात्रा को आरंभ किया था उसकी यात्रा हराम नहीं थी, जिस कार्य पे जा रहा था वो कार्य भी हराम नहीं था, अब अगर यात्रा के बीच में वो कोई ऐसा काम करे जो हराम हो, जैसे कि झूठ बोले, गीबत करे, ये वो कार्य हैं जो हराम हैं, इस्लाम ने इनकी बहुत निंदा की है, तो अगर इंसान यात्रा के बीच में हराम कार्य करता है तो ऐसी सूरत में उसका मसला क्या होगा? क्या इसकी ये यात्रा उस चीज़ में शुमार होगी जिसमें कहा गया है कि इसकी यात्रा हराम है, या उस चीज़ में शुमार होगी जिसमें कहा गया था कि इसकी यात्रा का जो कारण है, जिसलिए यात्रा कर रहा है, जो कार्य है वो हराम है। तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान जिस समय यात्रा को आरंभ करता है उस समय उसकी यात्रा हराम ना हो, उसका कार्य हराम ना हो, तो भले ही वो यात्रा के बीच में हराम काम करे लेकिन उसकी नमाज कसर ही होगी, उसको पूरी नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। इसमें एक और मसला जो आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है वो ये है कि कभी कभी ऐसा अगर हो जाए कभी कि इंसान जिस सवारी से सफ़र कर रहा है, यात्रा कर रहा है, वो गस्बी हो और वो यात्रा इसलिए कर रहा हो ताकि मालिक की पकड़ में ना आ सके, जैसे किसी इंसान ने कार चोरी की और चोरी करके भागा, तो चूंकि उसकी यात्रा का वसीला, उसकी यात्रा का साधन जो था वो गस्बी था, इसलिए उसकी यात्रा हराम मानी जाएगी और उसको नमाज पूरी ही पढ़ना होगी, कसर नमाज नहीं पढ़ सकता है। उसके बाद जो हम अपने आम जीवन में यात्राएं करते हैं, जैसे कहीं घूमने गए, किसी से मिलने गए या इस प्रकार की चीज़ें, ज़्यारत पे गए, इस प्रकार की चीज़ें, तो ऐसी यात्राओं का क्या होगा? तो आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि तफरीही यात्राएं, घूमने फिरने वाली यात्राएं, ये यात्राएं हराम नहीं हैं, और अगर कोई इंसान ऐसी यात्राओं पर जाता है तो उसकी नमाज कसर होगी, उसको पूरी नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये 6 शर्तें हुई जो एक नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक हैं। सातवीं शर्त जो एक नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक है कि उस यात्रा में पाई जाती हो, वो ये है कि जो इंसान, जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है वो बंजारा ना हो, जिसको हम खानाबदोश भी कहते हैं। बंजारा और खानाबदोश वो लोग होते हैं, यानी शरई व्याख्या में उन लोगों को कहा जाता है जो ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा यात्राएं करते रहते हैं, और जहाँ पर उनको अपने लिए, अपने जानवरों के लिए खाना और पानी दिख जाता है वहीं रुक जाते हैं और कुछ समय बाद अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर इंसान बंजारा है या खानाबदोश है तो ऐसे इंसान अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएँ करता है तो इस यात्राओं के बीच में जो नमाज होगी वो नमाज कसर नहीं होगी बल्कि उसको नमाज पूरी पढ़नी होगी। इसमें एक और मसला होता है, कभी इंसान अगर बंजारा है यानी हमेशा एक स्थान से दूसरे इंसान सफ़र करता रहता है, यात्रा करता रहता है, अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि उसकी यात्रा थोड़ी सी भिन्न हो, मसलन एक बंजारा एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर हमेशा जाता रहता था, एक शहर से दूसरे शहर हमेशा जाता रहता था, तो इस स्थिति में तो उसकी नमाज़ पूरी थी। अब वो बंजारा, वो खानाबदोश चाहता है ज़ियारत पे जाए या हज पे जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में भी उसकी नमाज़ पूरी होगी या ऐसी स्थिति में उसको नमाज कसर पढ़नी होगी? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर एक बंजारा हज या ज़ियारत पे जाना चाहता है तो इस सूरत में उसकी नमाज कसर होगी, उसको नमाज पूरी पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा भिन्न है। ये पहला फतवा तो ये हुआ कि अगर वो जाना चाहता है तो कुल्लन उसकी नमाज कसर होगी। आयतुल्लाह सिस्तानी यहाँ पर कहते हैं कि अगर इंसान जो बंजारा है वो यात्रा कर रहा है तो अगर उस यात्रा में भी उसको बंजारा कहा जाए, खानाबदोश कहा जाए, तो उसकी नमाज़ कसर नहीं होगी, उसको पूरी नमाज़ पढ़नी होगी। लेकिन अगर ज़ियारत या हज या इस प्रकार के सफ़र पर, इस प्रकार की यात्रा पर उसको बंजारा ना कहा जाए तो उसकी नमाज़ कसर होगी और उसको नमाज़ पूरी नहीं पढ़ना होगी। 8वीं शर्त जो एक यात्रा के कसर होने के लिए, जो एक नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक है, वो ये है कि जो इंसान, जो व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है उसका कार्य यात्रा करना ना हो, जैसे कि पायलट, ड्राइवर, रेलवे की पेंट्री वगैरह में इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं, उस प्रकार के लोगों के लिए नमाज कसर नहीं होगी। यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य सफ़र है, जैसे कि पायलट और पेंट्री में कार्य करने वाले, वो अपनी पहली यात्रा जिस समय आरंभ करेंगे, यानी एयर होस्टेस जैसे है या रेलवे की पेंट्री में कार्य करने वाला या पायलट, जिस समय वो अपनी पहली यात्रा को आरंभ करेंगे उस समय उनकी नमाज कसर होगी, उनको पूरी पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन पहली यात्रा के बाद जो दूसरी यात्राएं होंगी, उसके बाद जो यात्राएं होंगी, उसमें यात्राओं में वो अपनी नमाज को पूरी पढ़ेगा, उसको नमाज कसर पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो इंसान, वो व्यक्ति जिसका कार्य सफ़र करना है, जैसे ड्राइवर, ये लोग अगर दूसरे कार्य के लिए, किसी दूसरे कार्य के लिए यात्रा करें, जैसे एक ड्राइवर है जिसका कार्य सफ़र करना था, लेकिन वो बाद में चाहता है मसलन घूमने जाना चाहता है, हज पे जाना चाहता है, ज़ियारत पे जाना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं अगर उसका ये कार उसकी यात्रा में है, यानी उसका कार उसकी यात्रा नहीं है और दूसरे सफ़र पे जाना चाहता है, तो ये सफ़र उसको यात्रा वाले सफ़र में नहीं जुड़ेगा, बल्कि उसको नमाज कसर पढ़नी होगी, उसको नमाज पूरी पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसी में एक और बात जो अगला मसला निकल गया था वो ये है कि कुछ होते हैं जैसे सिटी बस के ड्राइवर या खोमचे वाले, जो एक छोटे से शहर में 15-20 किलोमीटर की परिधि में आते जाते रहते हैं, जिनका कार्य यही है, तो इन लोगों के लिए क्या हुक्म है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि इन लोगों को वो व्यक्ति नहीं कहा जाएगा जिसका कार्य यात्रा है, बल्कि अगर ऐसे लोग इत्तेफाक से किसी ऐसे सफ़र पर जाते हैं जो 8 फ़र्सख से ज़्यादा हो, तो उनको अपनी नमाज कसर पढ़नी होगी, वो नमाज पूरी नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये वो मसले थे जो नमाज कसर होने से संबंधित थे, वो शर्तें थीं जो हमने आपके सामने बयान की कि एक नमाज के कसर होने के लिए आवश्यक हैं कि ये 8 शर्तें पाई जाएँ। इसके बाद भी हम आपके सामने आते रहेंगे और मसाइल आपके सामने बयान करते रहेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।